ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम छठा स्कंद अध्याय 13 ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र, श्लोक संख्या 8 और 9। दोनों श्लोक लिख दिए, बहुत अच्छा। ब्रह्मा पित्रः गोग्नो मातृहाचार्यः गवान् स्वादा पुल्कसको वापी शुद्धिरन्यस्य कीर्तना तमस्वमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितोऽस्माभिरनुष्ठितेन हत्वापि स ब्रह्मचराचरं त्वम् न लिप्यसे किं खल निग्रहेण।
भगवान नारायण के पवित्र नाम के जप मंत्र से ब्राह्मण भाई पिता माता आचार्य की हत्या करने वाला मनुष्य समस्त पापों से तुरंत को हो जाता है। अन्य जाति मनुष्य भी यथा होते होने लगे तथा चाहना आपको करते हैं और हम सभी महास्मय करते हैं आपकी चिंता करें। यदि आप इस प्रकार भगवान नारायण को प्रसन्न कर सकें तो फिर आपको डर जाएगा और आप मुक्त हो जाएंगे। नहीं आप ब्राह्मण से आगे ब्रह्मांड की हत्या करना चाहते हो तथा वृत्ताखंड से लिखने वाली एक असुर की हत्या की क्या बात है तो आप लोगों से कितने लोगों को बता जानते हैं और ऐसे बोल रहे हैं।
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो ये जो प्रसंग है बहुत ही रोचक है। इस प्रसंग में धृतासुर की कथा चल रही है। इंद्र ने हुआ क्या था कि बृहस्पति इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपराध कर दिया तो बृहस्पति रुष्ट हो गए और फिर इससे असुरों को जब पता चला कि देवताओं ने अपने गुरु को रुष्ट कर दिया है और गुरु ने उन सब देवताओं का त्याग कर दिया है तो असुरों को अच्छा अवसर था तो उन्होंने जो है आक्रमण कर दिया और स्वर्ग हथिया लिया और देवता लोग जो है स्वर्ग से बाहर हो गए। तब वो ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि ये जो अपराध है जो आपने गुरु का किया है तो उसका कोई हल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशन मैं देता हूं तुमको, टेम्परेरी सॉल्यूशन, अस्थाई हल है ना, अनित्य हल है ना। वो क्या है कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप तुम्हारे भतीजे हैं, उनको जो है अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारे भतीजे पुत्र के समान हैं लेकिन उनका सम्मान करो, आदर करो और उनको जो है अपना पुरोहित बनाओ, अपना गुरु बनाओ। तो देवताओं ने फिर जो है विश्वरूप को समझाया मनाया और विश्वरूप भी तैयार हो गए और विश्वरूप की जो है शक्ति से सहायता से देवताओं को फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हुई, असुरों पर विजय प्राप्त हुई। और फिर क्या हुआ कि विश्वरूप को देखा इंद्र ने कि छिप करके दूसरे प्रकार का उल्टा कार्य करते हैं, वो उनकी जो माता है असुरों के कुल की है, तो असुरों के नाम पर भी कुछ आहुतियां छिप करके डालते हैं हवन कुंड में। तो जैसे इंद्र ने देखा कि ये तो जो है मतलब गलत आचरण कर रहे हैं, असुरों की शक्ति भी बढ़ा रहे हैं, देवताओं की शक्ति बढ़ रही है लेकिन असुरों की शक्ति भी बढ़ा रहे हैं, तो इंद्र ने विश्वरूप का सिर काट दिया। तीन सिर थे विश्वरूप के, तो तीनों सिर काट दिए और विश्वरूप की मृत्यु हो गई। तो वो जो ब्रह्महत्या लगी इंद्र को, तो इंद्र ने उस ब्रह्महत्या का चार प्रकार से विभाजन कर दिया, स्त्रियों को, वृक्षों को और जल को और पृथ्वी को ब्रह्महत्या दी, और ब्रह्महत्या का के साथ वरदान भी दिया। तो पृथ्वी को ब्रह्महत्या दी जिससे कि स्थान स्थान में बंजर दिखाई पड़ती है पृथ्वी, और साथ वरदान दिया कि जो गड्ढे हैं वो अपने आप भर जाएंगे पृथ्वी के। स्त्री को ब्रह्महत्या का एक हिस्सा दिया जैसे कि उनको अशुद्धि होती है महीने में तीन दिन, और लेकिन वरदान भी दिया कि गर्भावस्था में भी सहवास कर सकती हैं। और जल को ब्रह्महत्या का एक हिस्सा दिया, चौथा हिस्सा दिया, जिससे कि जल में फेना होता है, लेकिन जल को वरदान भी दिया कि किसी चीज में मिला दिया जाए तो उस चीज की मात्रा बढ़ जाएगी, जैसे दूध में जल मिला दो तो दूध की मात्रा बढ़ जाती है। और ब्रह्महत्या वृक्षों को दी तो वृक्षों से गौन निकलती है, अशुद्ध है वो। और वृक्षों को वरदान दिया कि कटने पर भी फिर से पैदा हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, इस प्रकार से। लेकिन फिर त्वष्टा ने क्या किया कि विश्वरूप उनके पुत्र थे, तो पुत्र की हत्या इंद्र ने की, तो इंद्र को मारने के लिए उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया, तो हवन कुंड में आहुति डाली, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु तुम जो है बढ़ो। इंद्र शत्रु ये शब्द जो है कुछ उच्चारण में गलती हो गई, तो इंद्र शत्रु का मतलब इंद्र का जो शत्रु हो तो वो पैदा करना चाहते थे, लेकिन वो पैदा हुआ ऐसा बालक जिसका इंद्र शत्रु बन गया, यानी जो इंद्र के हाथों मारा जाए, तो वो वृत्रासुर का जन्म हुआ तुष्टा के द्वारा, हवन कुंड से पैदा हुआ वृत्रासुर। और वृत्रासुर की जो है लंबाई चौड़ाई रोज बढ़ती जा रही थी, और कितनी बढ़ती थी कि धनुष से जो है बाण खींच करके जब मारा जाए, चलाया जाए, तो जितनी दूर तक बाण गिरे उतना वृत्रासुर की लंबाई चौड़ाई बढ़ती थी। एक दिन में इतनी लंबाई चौड़ाई बढ़ती थी वृत्रासुर की ना। तो फिर हुआ ये कि वृत्रासुर ने जो है अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए देवताओं को ललकारा असुरों के साथ, और सब देवता लोग जब आए और वृत्रासुर जो है के सामने सब असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्र फेंके, और वृत्रासुर इतने बलवान थे कि सब खा गए, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को खा गए, अब उनके हाथ में कोई शस्त्र अस्त्र नहीं, तो भागे सब देवता, सब भागे। कोई ऐसा भी भयानक व्यक्ति हो सकता है कि अस्त्रों को खा जाए, सब अस्त्र शस्त्र खा गए वृत्रासुर, सब भागे देवता लोग है ना। और भगवान विष्णु के शरण में गए तो जो है भगवान ने भी जो है स्वयं तो वृत्रासुर का वध किया नहीं, बल्कि ऐसा उपाय बताया जो इंद्र के लिए बड़े लज्जाजनक था। दधीच का इंद्र ने सिर पहले कभी काटा था या उसके सिर के 100 टुकड़े किए थे दधीच के, तो वो अलग घटना है। तो उन्हीं दधीच के पास अब भगवान की आज्ञा से इंद्र और देवताओं को जाना पड़ा उनकी हड्डी मांगने के लिए, और दधीच ने फिर जो है अपने शरीर की हड्डियां दी शरीर छोड़ करके, और विश्वकर्मा ने उससे वज्र बनाया, और वज्र हाथ में लेकर के इंद्र ने फिर वृत्रासुर का वध किया है ना। तो वृत्रासुर का तो वध कर दिया इंद्र ने, लेकिन फिर इस अध्याय के प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्योंकि वृत्रासुर की हत्या से सब लोग तो प्रसन्न हुए लेकिन एक इंद्र ही प्रसन्न नहीं हुए। तो फिर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, परीक्षित महाराज अच्छे श्रोता हैं जो कि प्रश्न पूछते हैं, है ना, और उनके प्रश्न के कारण ही अब ये कथा जो है आगे बीच में जो है निकल आई, है ना, तो बड़ी दिव्य कथा है परीक्षित महाराज के प्रश्न के कारण। तो हाँ, तो इंद्र ने जो है इंद्र जो है खुश नहीं हुए, तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि इंद्र क्या कारण है कि इंद्र खुश नहीं हुए। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इंद्र खुश नहीं हुए क्योंकि वृत्रासुर का वध करके उनको जो है दूसरी ब्रह्म हत्या लग गई, है ना, और इंद्र जो है पहले से ही नहीं चाहते थे ब्रह्म हत्या करना, तो वृत्रासुर विश्वरूप का पहले वध किया था, है ना, तो इसमें भी उनको अपनी पूरी शक्ति जो है लगानी पड़ी थी ब्रह्म हत्या को बांटने में और फिर उन चारों व्यक्तियों को वरदान देने में, तब इंद्र जो है नहीं चाहते थे वृत्रासुर का वध करना, और उनके सामने बड़ी समस्या थी कि हालांकि सब देवताओं के हित के लिए वृत्रासुर का वध तो करना चाहिए, देवताओं का विरोधी है, लेकिन साथ साथ वो जो है ब्राह्मण है, तो कैसे मैं वध करूं। तो ऋषि मुनियों ने जो है इंद्र को आश्वासन दिया, ऋषि मुनियों ने इंद्र को आश्वासन दिया तो वो जो है आज के दो श्लोकों में ऋषि मुनि जो है इंद्र से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अंत में क्या है, नल्ले प्रश्न किम खड़े निग्रहण, ये तो एक खल है, एक तो दुष्ट है, देवताओं का विरोधी है, तो असुर है खल, तो उसके निग्रह से मैं जो है आपको क्या दिक्कत है, हम आपका जो है अश्वमेध यज्ञ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ आपका कराएंगे, तो उससे जो है भगवान नारायण की पूजा होगी, तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये एक दुष्ट का आप वध कर रहे हैं, तो इसमें अगर कुछ पाप लगता है तो वो पाप तो कुछ है ही नहीं, इतने बड़े बड़े पाप ये जो है भगवान के नाम कीर्तन से दूर हो जाते हैं, क्या है ब्रह्मा जो ब्राह्मण का हत्यारा है ना, ब्रह्म हत्यारा, पितृ हत्यारा, गो हत्यारा, मातृ हत्यारा और गुरु हत्यारा, अगवान, तो ये सब अगवान है, जैसे भगवान होते हैं ऐसे अगवान भी होते हैं, अगवान है ना, अगवान का मतलब क्या है, जो पाप, जिसके पास पाप ही पाप जुड़ गए हैं, जैसे भगवान जिनके पास छह प्रकार के भाग वो भगवान कहलाते हैं, तो अगर आप भगवान की शरण नहीं लेते तो फिर आप क्या बनते हैं, अगवान, तो फिर आपके पास पाप ही पाप आते हैं, तो जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो क्या बनते हैं, अगवान, है ना, ये जो अपने को भगवान समझते हैं वो क्या होते हैं, अगवान, है भगवान अगवान, इसके हम भगवान अगवान को नहीं मानते, है ना, तो आप भगवान को नहीं मानते तो फिर आप क्या है, अगवान, है ना, अगवान है, तो कोई बड़ा खुश हो जाएगा कि मुझे अगवान कह दिया उसको पता नहीं अगवान का मतलब क्या है, जिसके पास पाप की संपत्ति है, भगवान जिनके पास छह प्रकार के ऐश्वर्य हैं, अगवान भगवान अगवान जिनके पास पाप का ऐश्वर्य अगवान, है ना, तो ये सब अगवान है, बड़े बड़े पापी, स्वाधा पुलकस स्वभावी, और जो कुत्ता खाने वाला चंडाल है पुलकस, उसी प्रकार के वो भी हैं, शुद्धिरन यश कीर्तनादि, जिनके कीर्तन से शुद्ध हो जाते हैं, तो जब कीर्तन मात्र से शुद्ध हो जाते हैं तो हम तो बहुत आगे का काम कर रहे हैं, क्या अश्वमेध यज्ञ के द्वारा उन भगवान की पूजा करेंगे, अगर कीर्तन मात्र से जिनके नाम कीर्तन मात्र से जो है इतने बड़े बड़े पापी शुद्ध हो जाते हैं, तो हम तो स्त्री बहुत आगे की बात कर रहे हैं, इससे भी आगे का काम करेंगे। वो क्या है? महामख महायज्ञ अश्वमेध यज्ञ के द्वारा उन भगवान की पूजा करेंगे। वो तो बहुत आगे है, भगवान के नाम कीर्तन से बहुत आगे है अश्वमेध यज्ञ करना है। तो वृत्रासुर की हत्या तो कुछ भी नहीं है। अगर आप जो है ब्राह्मणों सहित चर अचर संपूर्ण जगत की हत्या कर दोगे तो भी आप लिप्त नहीं होंगे, तो भी आप लिप्त नहीं होंगे, है ना। ऋषि मुनि इस प्रकार से आश्वासन दे रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। बृहद विष्णु पुराण में कहा गया है, नाम नो ही आवती शक्ति पाप निर्हर ने हरे तावत कर तुम न शक्नोती पातकम पातकी नरहा। इसका अर्थ प्रभुपाद ने दिया नहीं है, लेकिन अर्थ बहुत स्पष्ट है। क्या है? नाम नो ही यावत की शक्ति पाप निर्हर ने हरे, हरे हरि के नाम में पाप दूर करने की जितनी शक्ति है उतना पाप पापी व्यक्ति कर नहीं सकता। कोई कितने से बड़ा पापी हो उतने पाप कर नहीं सकता है जितनी शक्ति भगवान के नाम में है पाप दूर करने की है? फिर आगे यही नहीं, जगदा नंद पंडित कृत प्रेम निवर्त में कहा गया है, एक कृष्ण नामे पापी यत पाप छय बहु जन्मे से पापी करिते न रहे। इसका अर्थ क्या है? ये बंगाली है। एक कृष्ण नामे पापी यत पाप छय, एक कृष्ण के एक नाम से पापी के जितने पाप दूर होते हैं बहु जन्मे से पापी करिते न रहे, तो वो पापी कई जन्मों तक भी नहीं कर सकता एक कृष्ण के नाम से। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के पवित्र नाम का एक बार जप करने से मनुष्य जितना सोच सकता है उससे भी अधिक पाप फलों से वो मुक्त हो सकता है। पवित्र नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि केवल नाम जप से समस्त पाप कर्मों के बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। तब उनके संबंध में क्या कहा जाए जो नियम पूर्वक पवित्र नाम का जप करते हैं या श्री विग्रह की पूजा करते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए पाप बंधनों से मोक्ष निश्चित है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि जानबूझकर पाप करके पवित्र नाम का जप करके अपने को बंधन से मुक्त समझ लिया जाए, है ना। देखो यहां प्रभुपाद जी ने जो है बहुत गहरी बात बताई है, इसका अर्थ यह भी नहीं है, है कि नहीं। और यहां पर जो बात चल रही है वो यही चल रही है, ऋषि मुनि इंद्र को जो बता रहे हैं वो ये बात बता रहे हैं, है ना। आप समझ रहे? इसका मतलब ये है कि जो ऋषि मुनि है ये वे महाजन नहीं है, ऐसे महात्मा नहीं है जो 12 महाजनों के नाम बताए जाते हैं, है? स्वयंभू नारदा शंभू कुमारा कपिलो मनु प्रहलाद जन को भीष्म बलिर्वैया सकिर वयम, है ना। कि जो अजामिल था तो अजामिल जो है इतना पापी था लेकिन तो भी वो पापों से मुक्त हो गया, सोचिए। और वो नामाभास से वो नाम की महिमा न जानता था और नाम के विचार से वो नाम नहीं लेता था, वो मुक्त हो गया। और यहां पर इतने नाम की महिमा जान करके भी जो है क्या हो रहा है, पापों से मुक्त नहीं हो सकते, आप समझ रहे हैं। तो ये जो है कुछ बड़े रहस्य की बातें हैं। ऋषि मुनि जो है इतने नाम की महिमा बता रहे हैं, इतना नाम कि ब्राह्मणों सहित पूरे चर आचर की आप हत्या कर दो, पूरे संसार की हत्या कर दो तो भी तुम लिप्त नहीं होगे पाप से, इतना। लेकिन यहां काम नहीं करेगा नाम, यहां नाम काम नहीं करेगा। और अजामिल के लिए नाम काम कर रहा है जबकि वो जो है अपने पुत्र को नारायण बोल रहा है, वो सोचता भी नहीं कि नारायण कोई है, अपने पुत्र के अलावा और वो किसी को नहीं सोचता है। पुत्र को नारायण नाम से उच्चारण कर रहा है, बाकी कोई नारायण है या नहीं है उसका कुछ विचार नहीं कर रहा है, तो वो जो है पापों से मुक्त हो गया। तो यमदूत नहीं समझ पाए ये कैसे पापों से मुक्त हो गया, और उसको जो है वो पकड़ने के लिए आए, ये पापों से मुक्त कैसे हो गया, ये तो महापापी है। ये तो सोचता भी नहीं कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं और मैं पापों से मुक्त होने के लिए नाम ले रहा हूं, और वो पापों से मुक्त हो रहा है। और यहां पर पापों से मुक्त होने के लिए नाम की महिमा भी बताई जा रही है, और यहां पापों से मुक्त नहीं होंगे, ये इंद्र पापों से मुक्त नहीं होंगे। और जब विष्णु दूतों ने जो है हटा दिया यमदूतों को, चलो जाओ भगो, तुमको कुछ पता नहीं है, नाम की महिमा तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारे यमराज को भी पता नहीं है, बड़े दुख की बात है, तुम्हारे यमराज को भी कुछ पता नहीं है नाम की महिमा। और जब यमराज से जब उन्होंने बताया कि हम पता नहीं कौन थे जो जिन्होंने हमको रोक दिया, हम तो आपको ही मानते हैं कि आपका ही आदेश चलता है, आपके आदेश के ऊपर और किसी का आदेश चलता नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ और भी लोग हैं जो आपके आदेश से ऊपर चलते हैं, उन्होंने हमको रोक दिया। तो यमराज ने फिर बताया कि नहीं, वे जो है उन भगवान के सेवक हैं, जिन भगवान से ऊपर कोई नहीं है, और मैं भी उन भगवान का सेवक हूं, और इस नाम के महात्म्य को 12 लोग ही जानते हैं, इस नाम के महात्म्य को 12 लोग जानते हैं। तो वो अजामिल कैसे छूट गया, ये नाम की जो शक्ति है यहां तो काम किया, नामाभास में, नाम के आभास में, यहां तो नाम ने काम किया, अजामिल को जो है शुद्ध कर दिया, अजामिल पापों से शुद्ध हो गया, लेकिन यहां पर नाम की शक्ति काम नहीं करेगी। इसलिए जब नारद जी ने भी रत्नाकर डाकू को कहा था कि मरा मरा बोलो, तो इसलिए नहीं कहा था कि वो राम राम बोल नहीं सकते। पापी राम राम बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बोल नहीं सकते थे। ये मरा मरा क्यों कहा, जिसे अपराध ना हो, क्योंकि वो जो है भगवान के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना, ये जो है अपराध होता है। तो ये आचार्य हैं, ये जो है महाभागवत हैं नारद जी, इसलिए उसको जो है नाम नहीं दिया, राम नाम नहीं दिया, मरा मरा ये मंत्र है, नाम नहीं है, ये मंत्र है। और हम लोग भी जो है किसी को अगर बताते हैं हरे कृष्ण मंत्र, तो नाम नहीं बताते, मंत्र बताते, मंत्र मंत्र शब्द ध्वनि को सुनो, आप सुन रहे, क्योंकि लोगों की जो है भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो आप अगर उनको अगर नाम देते हैं तो वो जो है काम नहीं करेगा, अपराध होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है केवल हरे कृष्ण मंत्र बताया जाता है। जैसे गिरधारी स्वामी थे, तो उन्होंने जो है मतलब बताया था, चाइना में भी वो प्रचार करते हैं, तो कैसे प्रचार करते हैं, तो उन्होंने कहा कि चाइना के जो लोग हैं, तो अगर आप भगवान की बात करेंगे तो हजारों की संख्या में दूर भागते हैं। जैसे भारत में आप भगवान की बात करते तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं, चाइना में अगर आप भगवान की बात करोगे तो हजारों की संख्या में लोग भागेंगे। तो वहां हम लोग फिर क्या करते हैं, उनको बुलाते हैं कि भाई हम भगवान की बात नहीं करते, आइए तो उनको हम कुछ आसन सिखाते हैं कि इससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, और फिर जो है उनको ये हरे कृष्ण मंत्र बताते हैं। तो ये कोई नाम नहीं है, ये मंत्र है, आपके दिमाग के तनाव को दूर करेगा, ये जो है इस शब्द को सुनने से आपके दिमाग का तनाव दूर होगा, तो इसको वो स्वीकार कर लेते हैं कि भाई टेंशन दूर हो जाए, टेंशन बहुत ज्यादा है, तो दिमाग का तनाव दूर करने के लिए वो जो है हरे कृष्ण का जाप करते हैं, और उससे फिर वो शुद्ध होते हैं, तब उनको भगवद गीता की शिक्षाएं देते हैं और फिर वो ग्रहण करते हैं। तो जो आचार्य लोग होते हैं, नाम के आचार्य हो लोग होते हैं, तो वो जो है जब किसी को नाम देते हैं तो इस तरह से नाम देते हैं कि वो अपराध ना करे, तो है ना। तो नाम आभास, इसको नाम आभास बोलते हैं, शुद्ध शुद्ध नाम नहीं है, नाम आभास, तो नाम अपराध से नाम आभास में जो है बहुत शक्ति होती है, आप समझे ना। तो यहां पर जो है हम तात्पर्य पढ़ रहे थे, कहां पर हैं हम लोग, कहां तक पढ़ा था, हाँ यहाँ रूपा लिखते हैं, किंतु इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि जानबूझकर पाप करके पवित्र नाम का जप करके अपने को बंधन से मुक्त समझ लिया जाए। आप समझ रहे हैं? तो आप बड़ी जो है श्रद्धा पूर्वक आप जो है नाम लेते हैं और मैं तो पापों से मुक्त हो जाऊंगा तो क्या है, अरे इतने बड़े बड़े पापी मुक्त हो जाते हैं नाम से, तो मैं तो कुछ ज्यादा तो नहीं करता हूं, कभी कभी कर देता हूं कुछ गड़बड़ चल जाएगा, कभी कभी हो जाता है तो क्या है, चल जाएगा, है ना। तो ये पाप है, वो पाप, ये पाप, अरे इतने बड़े बड़े पापी जो है मुक्त हो जाते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो ये जो है नाम के बल पर पाप करना, तो इस तरह से जो है ये सातवां अपराध है। तो यहां पर प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि इससे क्या होता है कि नाम की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जो अपराध है वो पानी के समान है, जो नाम है अग्नि के समान है, पाप ईंधन है, तो सूखा ईंधन को आग जो है जला के भस्म कर देती है, है? लेकिन आग जो है आग लगाई आपने ईंधन में और साथ साथ पानी डाल दिया, और पानी क्या है, अपराध, तो वो क्या होगा, आग को बुझा देगा, आग बुझेगी, तो नाम की शक्ति जो है खत्म हो जाती है अपराध से, है ना। तो ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है ना। यहां प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा विचार श्री भगवान के चरण कमलों पर घोर अपराध है, घोर अपराध। अब इसको विचार करो, ये विचार, जबकि आप बड़े विश्वास के साथ आप पाप करते हैं, बड़ा विश्वास है, मेरे तो बहुत श्रद्धा है, एक काम नहीं करेगी वो श्रद्धा तुम्हारी, आपकी बहुत श्रद्धा है, अरे एक नाम में इतनी शक्ति है कि पापी जो है कई जन्मों तक नहीं कर सकता, हा? तो मैं तो यह थोड़ा बहुत करता हूं चल जाएगा, मांसाहार, जुआ, व्यभिचार, नशा कभी कभी हो जाता है, है ना। नियमित रूप से जाप करता हूं, 16 माला जाप करता हूं, 32 माला जाप करता हूं, 64 माला जाप करता हूं, है? तो मैं एक नाम में इतनी शक्ति, कई जन्मों तक कोई पाप नहीं कर सकता, और मैं तो कितने नाम 64 माला करता हूं रोज, और थोड़ा सा पाप करता हूं, है? अरे तो कुछ कुछ नहीं, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, है ना। यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा विचार श्री भगवान के चरण कमलों पर घोर अपराध है, नामनो बलात् यस हि पाप बुद्धि, निस्संदेह भगवान के पवित्र नाम में समस्त पाप बंधनों को दूर करने की शक्ति है, किंतु यदि कोई नाम जप करते हुए जानबूझकर बारंबार पाप करता है तो वह निंदनीय है। अब अजामिल जो है इतना पापी था और अपने पुत्र को नारायण नाम पुकारता था, तो वो जो है पापों से मुक्त हो गया, वो कुछ नहीं सोचता था, है ना। लेकिन आप नकल नहीं कर सकते, अजामिल हमारे महाजन हैं, महाजन ये ने गदा सपन था, अजामिल जिस रास्ते से चले हम भी उसी रास्ते से चलेंगे, नहीं चले, नहीं चलेगा, आप नहीं कर सकते, नाम कितनी महिमा, आपके ऊपर काम नहीं करेगी वो नाम की महिमा, आपको जो है नियमों का पालन करना पड़ेगा, पापों से बचना पड़ेगा, है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं किंतु यदि कोई नाम जप करते हुए जानबूझकर बारंबार पाप करता है तो वह निंदनीय है, निंदनीय है। अब गीता में भगवान कहते हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, तो दुराचार में कोई भजन करता है तो वो साधु है, और भजन में कोई दुराचार करे वो नहीं। आप समझ रहे हैं? दुराचार में कोई भजन कर रहा है ना, तो वो जो है साधु है, और भजन में कोई दुराचार करता है वो क्या है, उल्टा असाधु है। आप समझे? इसे सहजिया, प्राकृत सहजिया की प्रभुपाद ने खूब निंदा की, भक्ति विनोद ठाकुर ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने खूब निंदा की, जबकि कोई सोचेगा अरे कितना तो जो है वो गोपी भाव का जो है अभ्यास करते हैं, कितनी नकल करते हैं, कितना नाम लेते हैं। भजन में दुराचार, और दुराचार में कोई भजन करे साधु है अजामिल है, उसको भजन भी पता नहीं था कि भजन क्या होता है, और तो भी वो भजन कर रहा था, उसको पता नहीं था दुराचार में भजन कर रहा है, और भजन में दुराचार कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलता है दुराचार, लेकिन भजन में दुराचार कर रहे हैं, नहीं चलेगा। असाधु ये निंदा की बात है। तो ये है कुछ साइंस, इसे कहते हैं विज्ञान, साइंस ऑफ द होली नेम, नाम का विज्ञान। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इन श्लोकों में अनेक प्रकार के पाप कर्म करने वालों के नाम गिनाए गए हैं। मनुष्य संहिता में निम्नलिखित नाम दिए गए हैं, ब्राह्मण पिता तथा शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न पुत्र पारसव या निषाद कहलाता है, जो शिकार के करने के साथ ही चोरी करता है। शूद्र स्त्री के गर्भ से निषाद द्वारा उत्पन्न बालक पुक्कस कहलाता है। शूद्र की कन्या से क्षत्रिय द्वारा जन्म दिया गया पुत्र उग्र कहलाता है। शूद्र द्वारा क्षत्रिय की कन्या से उत्पन्न किया गया पुत्र छत्ता कहलाता है। निम्न वर्ण की स्त्री के गर्भ से क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र स्वाद अथवा कुत्ता खाने वाला कहलाता है। ऐसी संततियां पापी मानी जाती हैं, किंतु श्री भगवान का पवित्र नाम इतना प्रबल है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से ये सभी पवित्र हो जाती हैं, है ना। तो यहां पर हमें ये समझना है कि जगाई मधाई को भगवान चैतन्य ने क्षमा किया था किस शर्त पर, कि आगे से तुम पाप नहीं करोगे, है ना। इस शर्त पर क्षमा किया था कि आगे से तुम पाप नहीं करोगे, तो ये विधि है ना। आगे प्रोपर लिखते हैं, हरे कृष्ण आंदोलन जन्म या कुल का विचार किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र बनने का सुअवसर प्रदान करता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत 2.4.18 में पुष्टि की गई है कि रात हुणांद्र पुलिंद पुल कसा आभीर सुंभा यब ना खसा दया, ये नेच पापा यद पाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कि रात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस अभीर शुंभ यवन तथा खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, उन सर्व शक्तिमान भगवान को सादर नमस्कार है। ऐसे पापी व्यक्ति निश्चित रूप से शुद्ध हो जाते हैं यदि शुद्ध भक्त के निर्देशन में वे भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। यहां पर क्या विशेष बात है, शुद्ध भक्त के निर्देशन में, है ना। यहां पर डायरेक्शन डायरेक्शन की जरूरत है, शुद्ध भक्त के निर्देशन में पवित्र नाम का जप करते हैं। यहां पर ऋषिगण राजा इंद्र को वृत्रासुर के वध के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही उससे ब्रह्म हत्या क्यों न लगे, और वे उसे अश्वमेध यज्ञ करके पाप बंधनों से छुड़ाने का आश्वासन देते हैं, किंतु इस प्रकार की स्वार्थमयी युक्ति से पाप करने वाले को छुटकारा नहीं मिल सकता, इसे अगले श्लोक में देखा जा सकता है। आप समझ रहे हैं। तो ऋषि मुनियों की बात मान करके इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, और फिर जो है बड़े संकट में पड़ गए, ब्रह्महत्या आ गई, ब्रह्महत्या उनके पीछे पड़ गई, है ना, और उससे बचने के लिए उनको फिर भागना पड़ा, और फिर 1000 साल तक मान सरोवर में एक कमल की नाल के तंतु के अंदर छिप करके रहे इंद्र। तंतु कितना पतला होता है, कमल की नाल को तोड़ो तो पतले पतले धागे निकलते हैं ना उसमें, कितना पतला तंतु होता है वो, उस तंतु उन तंतुओं में से एक तंतु के अंदर छिप करके रहे, इतना छोटा रूप धारण करके इंद्र छिप करके रहे वहां 1000 साल तक, है ना। 1000 साल तक वो जो है नाम लेते रहे तब कहीं शुद्ध हुए। आप समझ रहे हैं? उसके बाद फिर ऋषि मुनि ने उनका सुमेध यज्ञ कराया। तो यहां तात्पर्य पूरा हो गया है? अब आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ, ऋषि मुनि लोग जो है प्रोत्साहन कर रहे हैं इसके लिए, उनको भी दोष लगेगा, उनको भी दोष लगेगा।
और पूजी जैसे इसमें बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हरि नाम से जो ये आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, आप जो हो ये अश्वमेघ यज्ञ करोगे, तो इसमें क्या वो नाम की महिमा को मतलब कम करके आंक रहे हैं?
क्या प्रश्न है?
जैसे वो कह रहे हैं कि नाम से ही जो इतने सारे बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और आप तो अश्वमेध यज्ञ करोगे, तो वो क्या नाम की महिमा को कम बता रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ को ज्यादा महत्व?
अच्छा, हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। उनका कहना है कि अगर नाम के कीर्तन मात्र से व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है, तो हम तो बहुत आगे की बात बता रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ से हम उन भगवान की पूजा करेंगे, है ना। तो जब ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं तो इसमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्थान में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर एक कृष्ण के नाम में जो है अगर कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है एक नाम से, तो वो उसको भी जो है यमराज दंड देते हैं, उसका भी वो भी जो है दोष है, वो भी गलत है। लेकिन जब ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा तो वो नाम क्या था? नामाभास था, नामाभास। और अश्वमेध यज्ञ जो है अगर शुद्ध भावना से किया जाए तो वो उसमें तो शक्ति है ही ज्यादा। लेकिन जहां पर कृष्णदास कविराज कहते हैं कि एक नाम, एक कृष्ण के नाम को जो है अगर एक कितना, 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ बताया गया, 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल होता है कृष्ण के नाम का, तो उसको यमराज जो है दंड देंगे, तो वो शुद्ध नाम की बात है। आप समझे, जो कृष्ण का शुद्ध नाम है उसकी शक्ति तो बहुत ज्यादा है, नामाभास है बहुत ज्यादा है, क्योंकि कृष्ण का ये जो शुद्ध नाम है अगर एक बार उच्चारण किया जाए शुद्ध नाम, तो वो तो कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा, ठीक है ना। जबकि नामाभास से व्यक्ति पापों से शुद्ध होता है और फिर उसको भक्तों का संग मिलता है, तो ये तो उसको जो है आगे बढ़ने का रास्ता मिला, नामाभास के द्वारा तो व्यक्ति को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। लेकिन जो शुद्ध नाम है उसमें तो एक शक्ति, इतनी शक्ति कि कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। तो इसलिए जहां तक इनका कहना है अपनी जगह पर ये भी सही कह रहे हैं, लेकिन वो यहां पर जो जिस नाम की बात बताई गई है वो नामाभास है ना। तो जो नामाभास है वो कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन शंकर से तो छुटकारा हो गया। द्रौपदी ने जो है शुद्ध नाम का उच्चारण किया था, हे कृष्ण द्वार का आवासन, शुद्ध नाम का उच्चारण किया था तो उसका भी संकट दूर हुआ। अजामिल ने नामाभास का उच्चारण किया था, उसका भी संकट दूर हुआ। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो नामाभास में और शुद्ध नाम में कोई अंतर नहीं है ना। जैसे कि सूर्य का आभास होता है, सूर्य का उदय होता है जब सूर्य दिखाई पड़ता है तो वो प्रकाश होता है, और जब सूर्य का आभास होता है सूर्योदय से पहले तो सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन सूर्य का आभास होता है, सूर्य का आभास, उससे भी अंधकार दूर हो जाता है। आप समझे, तो सूर्योदय से भी अंधकार दूर होता है और सूर्य के आभास से भी अंधकार दूर होता है। तो जहां तक अंधकार दूर होने की बात है, अंधकार तो दूर हो जाता है, आप अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं, सूर्योदय से पहले भी इतना अंधकार दूर हो जाता है कि आपका कोई डर नहीं रहता है कि भाई कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, है, और कोई जो है आपको मारने आ रहा है क्या हो रहा है, तो वो सब जो है आपको साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो सूर्य के आभास में और सूर्य के उदय में दोनों से जो है अंधकार दूर होता है, लेकिन अगर प्रकाश की तुलना की जाए तो सूर्य के उदय से जो प्रकाश होता है तो वो उसकी तो कोई तुलना नहीं सूर्य के आभास से, प्रकाश की मात्रा है ना, उसी प्रकार से शुद्ध नाम में भी जो है आपके संकट दूर हो जाते हैं और नामाभास से भी संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन जहां तक जो है और दूसरे प्रकार के फल हैं तो उनमें तो जो है कुछ विशेषता है। द्रौपदी ने जब शुद्ध नाम पुकारा था तो कृष्ण स्वयं आए, हालांकि कोई नहीं जान पाया, इन कृष्ण स्वयं ही वस्त्र बन गए, ये वस्त्रावतार था भगवान का, है ना, स्वयं आए। लेकिन अजामिल ने जब नामाभास प्रचरण किया तो भगवान स्वयं नहीं आए, कौन आए, उनके दूत आए, विष्णु दूत आए। अंतर है, ठीक है, अंतर है। हाँ जी,
तो जी जो अपने महाराज जी का उदाहरण दिया, जो वो चीन में प्रचार करते हैं, तो
क्या,
वो
क्या?
अपने महाराज जी का उदाहरण दिया, जो वो चीन में प्रचार करते हैं चाइना में, तो वो जो है वो मतलब नाम नहीं देते, मंत्र देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र मतलब लोगों से करवाते हैं,
मंत्र बताते हैं मंत्र।
इस नाम और मंत्र में थोड़ा अंतर समझ
नहीं। हाँ, नाम और मंत्र में अंतर यही है कि वो इसमें इस विषय में कुछ नहीं बताते कि ये भगवान का नाम है, ये कहते हैं ये मंत्र है, ये मंत्र का उच्चारण करो, हरे कृष्ण, ये शब्द केवल सुनना है कानों से बस, आप समझे। एक ऑफिस में हम भी गए थे तो वो एमपी थे, धर्म सिंधु प्रभु के ससुर थे वो, धर्म सिंधु प्रभु को आप लोग जानते हैं, तो अब तो रिटायर हो चुके हैं, तो एमपी थे वो, तो उनके ऑफिस में जब हम गए तो हमने जब उनको हरे कृष्ण मंत्र बताया कि आप इसका जाप करो, तो वो कृष्ण की निंदा करने लगे, राम की निंदा करने लगे, तो हमने कहा कि नहीं, ये जो है उनका नाम नहीं है, ये उनका नाम नहीं है, ये तो मंत्र है, आपको मंत्र जाप करना है 10 मिनट के लिए केवल। बोले अच्छा मंत्र है, तब तो ठीक है, मंत्र है तो ठीक है, कृष्ण का नाम और राम का नाम अगर लेना है तो राम की तो बहुत निंदा करने लगे, कृष्ण की भी निंदा करने लगे, उनका नहीं नहीं ये उनका नाम नहीं है, ये तो केवल मंत्र है, आप केवल 10 मिनट के इस मंत्र का उच्चारण किया करो बस, कुछ नहीं, ठीक है। नहीं तो हमारा अपराध हो ना, अश्रद्धालु को भगवान नाम की महिमा को उपदेश देना, तो हमसे अपराध होता है ना, वो भी अपराध करता, हमसे भी अपराध होता है, तो इसलिए अश्रद्धालु व्यक्ति को जो है कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, और कृष्ण प्रेम वो क्यों पाना चाहेगा, है ना, तो उसकी श्रद्धा नहीं है, तो हम उसको जो है मंत्र बताते हैं, मंत्र का जाप करना है केवल, ठीक है। और कोई, अच्छा 1 2 3 चलो आप
प्रभु जी, पित्रासुर के पास तो असुर का शरीर था, श्री इंद्र मानने पर उसको ब्रह्म हत्या का श्राप क्यों लगे?
हाँ, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है, वृत्रासुर का जो शरीर थे असुर का था, तो फिर उनको जो है ब्रह्म हत्या का जो है अपराध पाप क्यों लगा? तो जो वृत्रासुर थे तो असुर भी थे, लेकिन साथ साथ वो जो है त्वष्टा के पुत्र होने के कारण, पिता जो है ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो है मंत्र की आहुतियां डाली थी हवन कुंड में, तो वो जो है उसमें चेतना ब्राह्मण की थी, वृत्रासुर में चेतना ब्राह्मण की थी, और फिर आगे चल करके पता भी चला, इंद्र को डायरेक्ट अनुभव हुआ कि जब इंद्र ने गदा मारी तो गदा को जो है वृत्रासुर ने पकड़ के और इंद्र के हाथी को मारी, और इंद्र का हाथी जो है 18 कदम पीछे हट करके और गिर पड़ा, इंद्र भी गिर पड़े, उनके हाथ से वज्र भी छूट गया। अब इंद्र जो है बड़े लज्जित हो रहे हैं, अब वज्र को नहीं उठा रहे हैं, तो वृत्रासुर कहते हैं अरे अरे ये वज्र ऐसा नहीं है, गदा की तरह ये निष्फल नहीं जाएगा, वज्र उठाओ और वज्र से मेरा वध करो, और मैं भी चाहता हूं शरीर छोड़ना। और फिर उन्होंने वृत्रासुर ने ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान किया इंद्र को, इंद्र ने समझा ये तो इतने बड़े महात्मा है, सोचिए वो जो श्रीमद् भागवत का संदेश है जो भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, वो संदेश जो है वृत्रासुर इंद्र को दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ मेरा वध करो, मुझे जो है जल्दी है, मुझे वैकुंठ जाने की जल्दी है, तुम्हारा भी लाभ होगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मुझे वैकुंठ की प्राप्ति होगी, तो मेरा वध करो, है ना। तो इंद्र को वध तो करना ही था, लेकिन साथ साथ उनको बहुत दुख भी हो रहा था, कि उनको वो ज्ञान जो है दिया, वो दिव्य ज्ञान वृत्रासुर ने दिया इंद्र को, आप समझ रहे हैं। तो वृत्रासुर की हत्या के बाद तो इंद्र को और ज्यादा लज्जा हुई, ग्लानि, बहुत ज्यादा लज्जा और ग्लानि हुई, आप समझ रहे ना। तो इसलिए जो है इंद्र जो है बहुत दुखी हो गए। और वैसे तो असुर तो है ही है, देवताओं का कोई विरोध करे तो असुर है, आप समझे ना
प्रभु जी।
हाँ जी। और
जैसे तात्पर्य में कह रहे थे कि एक कृष्णा में इतनी शक्ति है कि जन्मों जन्मों से हम पाप करते हैं, हाँ, उतना पाप नहीं कि जितना कृष्णा हम समाप्त कर सकता, तो कोई विशेष नाम का है क्या, कोई भी कृष्ण नाम?
देखिए वो नामाभास है, नामाभास में कोई व्यक्ति अनजान में कुछ बोल देता है हरे कृष्णा, तो उसके सब पाप इस तरह से नष्ट हो जाते हैं। ये फिर आगे अगर अपराध ना हो तो, आप समझे ना, तो ये बहुत कठिन स्थिति होती है। नामाभास से सब पापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, लेकिन फिर आगे चल करके अगर अपराध हुआ तो फिर सब गड़बड़।
तो कोई अगर एक बार हरे कृष्ण बोल दे उसका सारा जन्म जन्म का पाप समाप्त हुआ था,
आप समझ रहे। तो ये जो है मतलब इतनी शक्ति है नाम में, मरा मरा। तो वाल्मीकि को जो है उन्होंने मरा मरा कहा कि मतलब मरा मरा का जप करो, है ना, इसमें इतनी शक्ति है नामाभास में। लेकिन फिर आगे चल करके जो है व्यक्ति, तो आखिर आना तो उसी रास्ते में पड़ेगा जहां पर आप हैं, ठीक है ना, कि भाई फिर आगे चल करके पाप ना करो। जैसे आपको पता चलता है कि ये पाप कर्म है, फिर आप पाप ना करो, तो आखिर आना तो वहीं पर पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए इससे कुछ मतलब काम नहीं चलेगा आपका, कि भाई इससे हम जो है शॉर्टकट से हम निकल जाएं और ये सब चक्कर नहीं करना पड़ेगा, कि आपको हमें नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा और हम उस शॉर्टकट से निकल जाएं। तो आना तो जब यहीं पर ही है, जब आना यहीं पर है तो शुरू करो फिर यहीं से ही, ठीक है ना। तो वहां से वहां पीछे क्यों जा रहे हो, ठीक है ना। जो भी हो, आप भक्तों की संगत में आ गए और नामाभास की शक्ति से आप आ गए भक्तों की संगत में, अब आपको जो है पता चला कि ये गलत है। हाँ, आपका प्रश्न।
जैसे इस कथा में आता है कि इंद्र ने विष्णु रूप को मारा और उनको पाप दिया गया, फिर पाप उन्होंने चारों में बांटर साहब पे वरदान दिया कि पानी को बताया कि किस तरह बबल्स आएंगे और बदल पॉइंट। प्रभु जी, इस लीला से पहले क्या ऐसा नहीं होता था क्या, मतलब इंद्र के वरदान देने के बाद ही ये सब होना शुरू हुआ?
हाँ,
इस लीला से पहले अगर पानी मिलाए तो क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी या फिर
हाँ, अपने आप में हाँ, कुछ कुछ था ऐसा। इंद्र जब जल को वरदान दिया इंद्र ने, तब जल में जो है ये शक्ति आई, ठीक है, नहीं तो फिर वो जो है अलग 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 दिखाई पड़ता था। हाँ जी, आपका प्रश्न।
बहुत धन्यवाद बोलिए, आप बहुत ही सुंदर क्लास, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे प्रश्न उठ गए, बाकी मुझे प्रश्न सुनते सुनते। जैसे उन्होंने प्रश्न उठाया कि इंद्र ने जब पहले ब्रह्म हत्या की, जब इंद्र ने पहले ब्रह्म हत्या की विश्व रूप की, तो उन्होंने पाप बांट दिए, तो हालांकि पेड़ ने, पानी ने, वृक्ष ने, इन्होंने तो पाप किया नहीं था, तो इनको पाप का भागीदार क्यों बनना पड़ा,
इनको पाप का भागीदार क्यों बनना पड़ा? इंद्र ने जो है जब पाप दिया उनको, तो उसके साथ फिर वरदान भी दिया ना, तुम हमारा पाप लो तो फिर हमारा जो है वो पुण्य भी लो, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने मतलब इस स्तर पर जो है पाप दिया, ठीक है ना। और कोई प्रश्न
है? मतलब दो तीन प्रश्न धन्यवाद। लेकिन जब इंद्र ने दूसरा जब वृत्रासुर का वध किया तो तब पाप नहीं बांटा,
अब तो इसमें सोचिए कि उन्होंने जो है वरदान देकर के अपनी शक्ति तो छीन कर ली ना हमने, अब और शक्ति नहीं ना, भी और किसी को दें और फिर जो है वो, और वो जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी वृत्रासुर। वृत्रासुर को जो है मतलब वास्तव में वो युद्ध नहीं कर रहे थे, वृत्रासुर जब युद्ध कर रहे थे तो उस समय तो इंद्र नहीं मार सके, और वृत्रासुर जो है इंद्र को खा गए, हाथी सहित इंद्र को खा गए, पेट में चले गए, है ना। और उस समय फिर वृत्रासुर भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, तब इंद्र ने जो है फिर उनका पेट फाड़ा उनको, और फिर उनका गर्दन काटी, है ना। तो जब गर्दन काटी वृत्रासुर की, पेट फाड़ करके निकल आए, चलो यहां तक तो ठीक है, फिर जब गर्दन काटी वृत्रासुर की तो उस समय वो भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, है ना। तो वो जो है मतलब उस समय वो युद्ध बंद हो चुका था, युद्ध तो बंद हो चुका था। तो जो भी हो, तो ये जो है कुछ बातें हैं जो जिनको हमें मतलब शिक्षा मिलती है कुछ। और कोई प्रश्न?
आखिरी प्रश्न।
अच्छा हाँ,
जैसे भी आपने बताया कि क्योंकि वो वृष्टा के पुत्र थे वृत्रासुर, तो वो ब्राह्मण माने गए, तो हम जैसे
हाँ इनका अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अभी तो हम यही कहते हैं कि ब्राह्मण का जो पुत्र है वो पुत्र होने से ब्राह्मण नहीं बनता है ना, तो ये बात सही है, लेकिन ये इस समय जो है वो व्यवस्था नष्ट हो चुकी है, इस समय वो व्यवस्था नष्ट हो चुकी है, गर्भाधान संस्कार भी नहीं होते है ना, इसलिए अब जो है ब्राह्मण के घर में कोई जन्म लेता है तो उस बालक में जो है ब्राह्मण के जो लक्षण है वो नहीं होते पैदा, ठीक है ना। लेकिन पहले के युगों में क्या था कि कुछ ऐसी विधियां होती थी जिनसे कि जो संस्कार होते थे, गर्भाधान संस्कार होते थे, उनसे फिर जो है ब्राह्मण जो है ब्राह्मण पुत्र ही पैदा करता था। जैसे ऋषि मुनि थे तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए अलग से स्वरूप बनाया और अपनी सास के लिए अलग से स्वरूप बनाया, क्योंकि उनके जो ससुर थे वो क्षत्रिय थे और वो स्वयं ब्राह्मण थे, तो अपनी पत्नी को जो है ब्राह्मण पुत्र प्रदान करने के लिए स्वरूप बनाया और अपनी सास को क्षत्रिय पुत्र प्रदान करने के लिए स्वरूप बनाया। और जब माँ और बेटी ने स्वरूप बदल लिए तो ऋषि मुनि बोले तुमने बहुत गलती की, अब तुम्हारा जो पुत्र है वो क्षत्रिय होगा और तुम्हारी सास का पुत्र है वो ब्राह्मण होगा, आप समझ रहे ना। तो कुछ ऐसी विधियां होती थी, ठीक है ना। तो त्वष्टा ने जो है जब वृत्रासुर को उत्पन्न किया तो हालांकि वो असुर तो है, आसुरी स्वभाव तो है, साथ साथ ब्राह्मण के भी लक्षण है, ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ तो कई लोगों ने उठाया था, अच्छा चलो इनके लिए।
आपने ये कहा कि जो हरे कृष्ण नाम नहीं, फिर नाम क्या है?
नहीं, हमने ये नहीं कहा कि नाम नहीं है, ये तो नाम है और सर्वश्रेष्ठ नाम है, हरे कृष्ण मंत्र जो है सर्वश्रेष्ठ नाम है, लेकिन हम जब किसी व्यक्ति को नाम दें और उसके नाम में श्रद्धा नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो ज्यादा अच्छा ये है कि हम मंत्र दें उसको, मंत्र बताएं।
आपने जो बताया
है, उसके हिसाब से
अगर मैं पूरी श्रद्धा के साथ हरे कृष्ण
महामंत्र का जाप करता हूँ
तो क्या मैं
वास्तव
में भगवान के
नाम का जाप
करता
हूँ
या नहीं?
फिर से बोलिए।
मंदिर
में आने से वो माइक को जो है
मुंह
में लगाओ,
दिए गए हैं उनका भी आपको पालन करना है, आप समझे। तो श्रद्धा तभी मानी जाती है जब आप उस विधि का पालन करें, आपको नाम दिया गया है कि आप नाम जप करिए, साथ साथ आपको विधि भी बताई गई कि क्या विधि है, आपको चार नियमों का पालन करना है, चार प्रकार के पाप कर्म छोड़ना है, तब कहीं आप की श्रद्धा मानी जाएगी। लेकिन अगर आप जो है विधि का पालन नहीं करते और आपकी श्रद्धा है तो वो श्रद्धा क्या है, उसको दंभ अहंकार कहा जाएगा। अशास्त्र भीतम घोरम तप्यंते ये तपोजना, शास्त्र की विधि को छोड़ करके कोई व्यक्ति अगर कुछ करता है पूजा, तो वो पूजा भी नहीं है, तप्यंते ये तपो, बहुत घोर तपस्या कर रहा है, दंभाहंकार से मिलता है, दंभ और अहंकार है, तो ये दंभ और अहंकार ही माना जाएगा, ये श्रद्धा नहीं मानी जाएगी। अर्जुन ने इसीलिए तो प्रश्न किया सत्रह अध्याय में कि ये शास्त्र विधि मत सृज्य, ये जनते श्रद्धान में था, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। अब यहीं पर ही बात कट जाती है कि आप शास्त्र विधि को छोड़ दिए आपने और आप श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहे हैं, तो वो श्रद्धा कैसी है? श्रद्धा फिर श्रद्धा का प्रश्न ही नहीं उठता। श्रद्धा का प्रश्न तब उठता है जब उस विधि का आप पालन करें, जब आपको नाम दिया गया तो उसके साथ विधि बताई गई कि आप चार नियमों का पालन करिए, ठीक है ना, वही मतलब है, तब श्रद्धा मानी जाएगी, ठीक है। बस बस अब देखिए इतना समय नहीं होता है, इतना समय नहीं होता है, बाद में प्रश्न करना, अभी इतना समय नहीं होता है। और किसी का प्रश्न? हाँ जी
जी, जो इंद्र ने मारा था वृत्रासुर जी को, तो ये वो ऋषि मुनियों के आदेश पे मारा था, तो सिर्फ यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे भागवतम में इंद्र को ही निशाना बनाया, काइंड ऑफ ही इज ओनली द, ऐसे बताया गया कि ही इज ओनली द मेन पर्सन, उसकी वजह से हुआ है।
इनका अच्छा प्रश्न है कि इंद्र ने वास्तव में वृत्रासुर की जो हत्या की वो ऋषि मुनियों के आदेश से की। हाँ, ऋषि मुनियों के आदेश से की। तो आपका प्रश्न ये है कि फिर इंद्र को क्यों मतलब वो हत्या लगी, आपका ये कहना है ना? हाँ हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है, इनका अच्छा प्रश्न है कि इंद्र ने जो है ऋषि मुनियों के आदेश से की हत्या की। इसमें क्या है कि आदेश है भी, लेकिन साथ साथ एक दूसरी भावना ये भी है, उनको समझ आ रहा है कि गलत काम है, मैं गलत काम कर रहा हूं, हालांकि आदेश दे रहा है कि करो है? और वो समझ में आ रहा है कि भाई आदेश गलत है, और फिर भी मैं गलत कर रहा हूं भाई उनके आदेश के बल पर, आप समझे? तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खुद करना चाहता हूं, गलत काम है, और कोई व्यक्ति जो है उसको समर्थन करता है कि नहीं नहीं गलत नहीं है, तो मैं उस बात के बल पर जो है मैं गलत काम करता हूं, तो मुझे भी आएगा, फिर मेरे ऊपर भी दोष आएगा, ठीक है ना?
और ये जो इंद्र जी ने मारा था वृत्रासुर को, ये तो वैष्णव अपराध था ना कंप्लीट?
हाँ,
इसीलिए नाम की वजह से पाप नहीं कटा।
वैष्णव, अब ऐसा ना, कभी वैष्णव कहा जाता कभी नहीं कहा जाता, क्योंकि ब्राह्मण के ही जो है तीन स्तर होते हैं, द्विज विप्र वैष्णव, तो तीनों प्रकार के ब्राह्मण हैं, आप समझे? तो कई बार श्रीमद् भागवत में ब्राह्मण शब्द का ही प्रयोग हुआ है, वैष्णव शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है ना, ये ब्राह्मण का ही सबसे ऊंचा स्तर वैष्णव होता है, ठीक है ना? और कोई
जैसे अभी नाम की महिमा है कि एक नाम लेने से इतने सारे पापों का क्षय हो जाता है, अगर ऐसा सोचते हुए अगर विद सच अप्रिशिएशन हम लोग जप कर रहे हैं, तो इज इट नाम अपराध?
नहीं, ये नाम अपराध नहीं है, जो हुए हैं, जो पाप हुए हैं तो उनको दूर करने के लिए भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो ये श्रद्धा सही है, ठीक है ना? लेकिन इसके बल पर, तो इसलिए वो जो दीक्षा के प्रश्न है ना, उसमें एक आता है ना कि कोई व्यक्ति जो है पाप करने की योजना बनाता है ना, कि मैं पाप से छूट जाऊंगा, तो जो पाप करने की योजना बनाए इस नाम के बल पर, तो वो जो अपराध होता है, ठीक है? और कोई प्रश्न? हाँ, समय काफी हो गया है। आखिरी प्रश्न, ठीक है
जी? हाँ, जब इंद्र ने वृत्रासुर की हत्या कर दी तो उन्हें नाम अपराध भी लगा उन्हें इंद्र को, और उससे छुटकारा उनको ऐसे मिला कि वो कमल के फूल के अंदर जाके उन्होंने काफी समय तक हरिनाम लिया और बाद में अश्वमेध यज्ञ। तो नाम अपराध लगने के बाद में हरिनाम से कैसे
छुटकारा? नामापराध युक्ता नाम नामा ने हरंत्यघम अभिश्रांत प्रयोक्ता ने तान्य वर्थ करानी चाह। जब नाम का अपराध अगर हो गया तो वो नाम ही जो है उस अपराध को दूर करेंगे। अविश्रांत प्रयोक्ता नहीं, तो बिना विश्राम के लगातार करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है? धन्यवाद। चंद्रा श्रीमद भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधिका रमण भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा मणिदेव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। हो